मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम कल के ही विषय को बढ़ाते हैं और कल हम लोग बात कर रहे थे ईश्वर हमारा पिता है इस विषय पर। इनफैक्ट हम बात क्या कर रहे थे, इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे और कल मैंने बस थोड़ी सी जो बात आपके सामने रखी थी वो कुल मिलाकर के यही थी कि अगर हम सच में मानते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है तो हमें मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर कभी भी हमारा अहित नहीं करेगा, अहित नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी पिता कोई भी मां अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती है। बावजूद इसके कि बच्चों और अभिभावकों में सीधे सीधे टकराव होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, अलगाव भी होते रहते हैं, इसके बावजूद माता पिता के मन में कभी भी ये बात नहीं आ सकती, नहीं आती है कि मेरे बच्चों का अहित हो, बुरा हो। कल मैंने इस तथ्य को आपके सामने अपने तरीके से रखने की कोशिश की थी। मित्रों, इसी बारे में मैं आज कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे इसकी इजाजत दें। देखिए फ्रेंड्स, ईश्वर हमारा पिता है, इसी के आधार पर शायद हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस वाक्य का भी प्रयोग कर जाते हैं कि प्रभु की इच्छा। आप देखेंगे कि ये चाहे हम विनम्रता वश कहें, सदाचार वश कहें या अनजाने में ही हमारी जुबान पर यह वाक्य आकर बैठ गया है कि जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, सुख और दुख दोनों की ही स्थिति में अक्सर आप ये सुनेंगे लोगों को कहते हुए कि प्रभु की जैसी इच्छा हुई है वही जो राम रची राखा। इसी बात को तुलसीदास जी ने इस रूप में कहा है, प्रभु की इच्छा। मित्रों, अगर हम प्रभु को यहां पिता मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि पिता की जो भी इच्छा, यानी कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा, वह मेरे ईश्वर रूपी पिता या पिता रूपी ईश्वर जो भी आप कह लीजिए उनके इच्छा के अनुकूल हो रहा है, तो इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। यही कहने में आता है, यही सुनने में आता है, या यूं कह लीजिए कि इसका लगभग लगभग यही अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम इसे फिर से थोड़ी तर्क की कसौटी पर कसते हैं या यूं कह लीजिए कि समझने की कोशिश करते हैं तो फिर यहां हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और फिर निष्कर्ष तलाशने पड़ते हैं। अब आप देखें कि अगर हम मानते हैं कि प्रभु की इच्छा ठीक है, यानी कि पिता की इच्छा, और यदि हम ये भी मानते हैं कि पिता कभी भी अपने संतान का बुरा नहीं चाहता और ईश्वर हम सबका पिता है तो वह भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। तो मित्रों, यहां फिर एक बात सोचने की है कि आज हम अपने देश में देख लीजिए या पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जो आपाधापी मची हुई है, आतंकवादी गतिविधियां देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, भूखमरी देख लीजिए, दुश्मनी देख लीजिए, युद्ध देख लीजिए, अकाल देख लीजिए, ये बीमारियां देख लीजिए, आपसी झगड़े देख लीजिए, कलह देख लीजिए, ये जो निगेटिव साइड ऑफ द लाइफ है, हमारे जीवन का जो नकारात्मक पक्ष है जो लगातार एक तरीके से दावानल की तरफ फैलता ही चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ती ही चली जा रही है। तो क्या ये सच में प्रभु की ही इच्छा है? क्या प्रभु ही ऐसा चाह रहा है कि उसकी संतानें इस तरह के संकटमय स्थिति में रहें? आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स की सन 60-70 के आसपास एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान। और आगे की जो पंक्तियां हैं वो बता रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कितना बदल गया इंसान, इंसान बदल गया। चलिए, उन्होंने इस तरह से बात कह के संभाल ली, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तू क्या कर रहा है, ये तेरी किस इच्छा का प्रतिफलन है कि ऐसा सब हो रहा है। लेकिन यदि हम यहां ईश्वर की इच्छा को ही सर्व मान रहे हैं, सर्वस्व मान रहे हैं, तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि नहीं, फिर वो बहुत अच्छा पिता तो नहीं है। फिर हम उसके प्रति सद्भाव क्यों रखें, हम उसकी आराधना क्यों करें, अर्चना क्यों करें? फिर तो हम सीधे उससे टक्कर लें, फिर कोई जरूरत नहीं है हमें उनकी आराधना करने की, उनकी पूजा करने की, क्योंकि वो हमारा भला ही नहीं चाह रहा है। आप बताइए कि भौतिक जगत में व्यावहारिक रूप में जो हमारी हमारा बुरा चाहता है उससे उसके क्या हम उससे दोस्ती करते हैं? क्या हम उसके शुभ चिंतक होते हैं? हम तो उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर अगर ईश्वर हमारा बुरा चाह रहा है तो फिर हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम उससे बचने की कोशिश नहीं करते। बल्कि सच तो ये है कि कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, जब हम दुखी होते हैं, परेशानी में पड़े रहते हैं, तब शायद ईश्वर को सबसे ज्यादा याद करते हैं। यहां भी हमें फिर एक उल्टी स्थिति दिखाई देती है, हम अपने दुश्मनों को तो याद नहीं करते, अपने दुख देने वालों से तो दूर भागना चाहते हैं, फिर ईश्वर की इच्छा से ही हमें अगर दुख मिल रहा है तो हमें उससे दूर होना चाहिए, लेकिन हम उसके और करीब आते चले जाते हैं। तो आपने देखा कि यहां फिर से ईश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ईश्वर हमारा पिता है, उसके बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलता है, नई तरह से सोचने को चीजें मिलती हैं। आइए मित्रों, हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि जो प्रभु की इच्छा होती है या जो ईश्वर हमारा पिता है और ये ईश्वर की इच्छा की हम बात करते हैं तो दरअसल उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, वैसे तो इच्छा शब्द को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि ये दुख का कारण है, और हमारे यहां बहुत से धार्मिक ग्रंथ उपदेश भी यही कहते हैं कि इच्छाएं अपनी घटाओ, इच्छाएं मत करो, मन में संतोष लाओ, संतोष ही सुख का आधार है, ये बातें अक्सर कही जाती हैं। लेकिन मित्रों, दर्शन शास्त्र एक तरफ होता है और व्यावहारिक जगत एक तरफ होता है। व्यवहार बिल्कुल, ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल उसके विरोध में खड़ा हुआ भी दिखाई देता है। वो खासकर तब होता है जब दर्शन शास्त्र बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बिल्कुल चरम स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, जो हमें गौतम बुद्ध के विचारों में दिखाई देता है कि इच्छाएं दुख का मूल कारण है। नो डाउट कि इच्छाएं दुख का मूल कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कौन सी इच्छाएं? मुझे ऐसा लगता है कि बुरी इच्छाएं और बहुत बहुत इच्छाएं दुख का मूल कारण होती हैं। देखिए, बुरी इच्छा अगर मेरी है तो पक्का मुझे इस बात को लेकर चलना चाहिए, पक्के तौर पर लेकर चलना चाहिए, और इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि मेरी बुरी इच्छा मुझे बुरे कर्म की ओर प्रेरित करेगी, ढकेलेगी, मैं बुरे कर्म करूंगा, और जब मैं बुरे कर्म करूंगा तो उसके नतीजे बुरे ही निकलेंगे और वो दुख का कारण बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसा मैं बोऊंगा वैसा ही मुझे काटना पड़ेगा, ये ईश्वर का नियम हो या न हो, लेकिन प्रकृति का तो नियम है ही, और ये जीवन का भी नियम है और जगत का भी नियम है। दूसरी बात है बहुत बहुत इच्छाएं। जब इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, संख्या में जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो दुख का कारण बनेंगे, क्योंकि आप उतनी सारी इच्छाओं को हैंडल कर ही नहीं सकते, कोई नहीं हैंडल कर सकेगा, और मैं एक को छोड़ के दूसरे की तरफ भागूंगा, दूसरे को छोड़ करके तीसरे की तरफ भागूंगा, और पूरी जिंदगी भागते ही भागते खत्म हो जाएगी। जिसे तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अंतिम रचना विनय पत्रिका में कहा कि दासत ही सब बीत गयो निसी, कबहू न नाथ नींद भर सोयो, कि हे प्रभु, मेरी तो पूरी रात केवल बिस्तर बिछाते हुए ही बीत गई, मैं तो कभी भरपूर नींद ले ही नहीं पाया, तो मैं भागते भागते ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा, तो वो तो दुख का फिर कारण बनेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम कहें, फ्रेंड्स, आप सब ने जो हाथ की कारीगरी दिखाने वाले जादूगरों को देखा होगा कि वो 5-7 बॉल लेते हैं और उछालते रहते हैं, लगातार उनके हाथ तेजी से मूव करते रहते हैं, बालें उछलती रहती हैं, उनके हाथ में आती रहती हैं, और एक वृत्त सा बन जाता है, और कोई बॉल नीचे नहीं गिरती और कोई बॉल आपस में टकराती भी नहीं है, और बड़ा देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उनकी जो लय होती है बड़ी खूबसूरत लगती है, ये उसका सौंदर्य है। लेकिन मित्रों, मान लीजिए कि वो 7 बॉल ऐसा कर रहा है, 7 बॉल्स के साथ तो ऐसा कर लेता है, अगर आप 7 की जगह 17 बॉल दे दीजिए तो नहीं संभलेगा उनसे, जहां जैसे ही 7 बॉल की संख्या 17 हुई, अब नहीं संभलेगा और पूरा का पूरा उसका सौंदर्य बिखर जाएगा। इच्छाओं के साथ भी यही होता है कि हमारी इच्छाएं अगर कम है, नियंत्रण में है, तो वो एक बहुत ही सौंदर्य हमें प्रदान करती है, जीवन का सौंदर्य प्रदान करती हैं, क्योंकि उससे हम वृत्त बनाते हैं, उससे हम खेलते हैं, वो इच्छाएं हमारे जीवन का अर्थ प्रदान करती हैं। लेकिन अगर उसे बढ़ाकर 17 कर देते हैं, अब आप बताइए कि 17 इच्छाएं दुख का कारण तो बनेंगी ही, 17 बॉल की तरह। अब हमको फिर लगने लगता है कि नहीं, जो ईश्वर है वो हमारा पिता नहीं है, क्योंकि पिता कभी भी अपने पुत्र की इच्छाओं को अधूरा नहीं रहने दे सकता, उसे पूरा करता है। तो गलती हमारे पक्ष में हो रही है या ईश्वर के पक्ष में हो रही है? चलिए यहां एक बात और भी देखते हैं फ्रेंड्स, जितना भी वक्त बचा है उसमें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिता हैं और मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, राइट? तो अब मेरे पिता क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए। क्या मेरे पिता मुझे आईएएस ऑफिसर के बनने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या मुझे वो किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरी का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में ला करके दे सकते हैं? कोई कर सकता है ऐसा? केवल इसी के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। मैं चाह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, मैं बहुत बड़ा किसान बन जाऊं, तो किसी के पिता इस काम को कर सकते हैं, ला करके सीधे सीधे दे सकते हैं? ज्यादा ज्यादा वो यही कहेंगे कि भैया ले, मेरे पास जो सारी चीजें हैं वो तू ले ले और जो कर ले, जो करना हो तू जान, मेरी तो सारी चीजें तुम्हारी ही हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा हमें उस इच्छा की पूर्ति के लिए जितनी भी स्थितियां चाहिए, जो भी साधन चाहिए, वो उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है बेटे, तुम आईएएस अफसर बनना चाह रहे हो तो तुम चले बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। तो आप कहेंगे कि साहब मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना है, तो भैया दिल्ली चले जाओ। कोई कहेगा इलाहाबाद जाना है, तो भैया तुम इलाहाबाद चले जाओ। अच्छा कितना खर्चा लगेगा? अच्छा इतना खर्चा ले लो। कोई कहेगा कि शादी अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि आईएएस अफसर बनना है, तो ठीक है बेटे शादी भी मत कर तू, इतना खर्चा चाहिए इतना खर्चा ले ले। नौकरी छोड़ना चाहता ये भी छोड़ दे। उस यानी कि आप उसको पाने के लिए, आईएएस अफसर बनने के लिए जो जो चीजें चाह रहे हैं वो सारी चीजें आपके पिता, आपकी माता आपको उपलब्ध करा रही, स्थितियां प्रोवाइड कर रही है, बस दैट्स ऑल। ईश्वर भी यही करता है और इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जब हम अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर के उसके लिए प्रयास करने शुरू कर देते हैं तो हमें रास्ते दिखाई देने लगते हैं, परिस्थितियां उसके अनुकूल बनने लगती हैं। और ईश्वर यही कर सकता है और यहीं पर आकर के सिद्ध होता है कि सचमुच ईश्वर हमारा पिता है, क्योंकि पिता भी यही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो हमारी सफलता की गारंटी नहीं हो सकता, वो हमें सफलता की गारंटी के लिए जो स्थितियां चाहिए वो प्रोवाइड कर सकता है, करना तो हमें खुद ही होगा। तो मित्रों, मैंने ईश्वर हमारे पिता हैं, हम सबके पिता हैं, इसको लेकर के कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। ईश्वर हमारे पिता हैं से शुरू होकर के अब उसका अंत अब इस अंतिम वाक्य पर होता है कि पिता के रूप में ईश्वर या ईश्वर के रूप में पिता हमें स्थितियां उपलब्ध कराता है और जो प्राप्ति है वह बिना कर्म के कतई संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।